पैराग्राफ चेंज। संत या भक्त के मन को निर्मल कहा गया है, व्यक्तिगत राग द्वेष से परे, उदार और क्षमाशील। मीरा की मनोभूमि ऐसी नहीं है। वे न तो अपने आक्रांताओं को जिंदगी की आखिरी सांस तक भूल पाई है और ना ही क्षमा कर पाई है। पृष्ठ संख्या 256। उनके प्रति उनकी घृणा रह रहकर भभकी और धधकती रही। फिर भी मीरा संत और भक्त के रूप में मान्य है। निश्चय ही संत और भक्त तो वे हैं, परंतु इनके साथ साथ एक औरत होने का एहसास भी उनमें बराबर रहा है। उनके पदों में संत और भक्त होने के साथ उनके औरत होने, लाचार और निहीर औरत होने की पहचान भी जुड़ी हुई है। वस्तुतः औरत होने का यह एहसास ही मीरा को हमारे समय के स्त्री विमर्श से जोड़ता है। यह सताई हुई और मीरा में बराबर जिंदा रही है। मीरा ने उसे विचार के स्तर पर और संस्कार के स्तर पर अपने में सिद्धस्थ जिलाए रखा है। जितना सच मीरा का संत या भक्त होना है, उतना औरत होना भी उतना ही बड़ा सच है। इस बिंदु पर सहज ही एक जिज्ञासा होती है। पैराग्राफ चेंज। हम कह चुके हैं कि अपने समय में मीरा की अपने ऊपर थोपी गई पाबंदियों के खिलाफ बगावत, वंश कुल की मर्यादा को अमान्य कर पति की मृत्यु पर उनका सती न होना, सधवा की तरह सज संवर कर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के समक्ष नाचना गाना साहस का, जोखिम का कार्य था, जिसे मीरा ने जोखिम उठाकर किया। परंतु पदों का साक्ष्य देखे तो मीरा का यह विद्रोह उनका निजी व्यक्तिगत विद्रोह ही अधिक लगता है। वह व्यंजक है, परंतु है वह व्यक्तिगत विद्रोह ही। हमें मीरा के ऐसे पद नहीं मिलते जिनमें उनका यह विद्रोह उनके स्व से आगे जाकर स्त्री जाति की यातना और मीरा जैसी उनकी मनोकांक्षा से जुड़ी हो। बंधनों से अपनी मुक्ति का आग्रह मीरा में है। उस मुक्ति की आकांक्षा के तार स्त्री जाति की वैसे ही मुक्ति से सीधे नहीं जुड़ते। हम उन्हें स्त्री जाति की मुक्ति, पराधीनता से मुक्ति से जरूर जोड़ते हैं, परंतु मीरा की मनोभूमि में भी उनकी अपनी मुक्ति के साथ स्त्री जाति की मुक्ति की भी चिंता या उससे उनकी संलग्नता थी या नहीं थी, इस विषय में जिज्ञासा बनी रहती है। मीरा की पदावली जितनी और जो भी हो पूरी तरह प्रामाणिक नहीं है। जिज्ञासा होती है कि अपनी यातना, अपनी बेबसी, अपनी मुक्ति के साथ मीरा को क्या कभी स्त्री जाति की यातना, पराधीनता या मुक्ति की आकांक्षा की बात याद आई? पैराग्राफ चेंज। मीरा के संदर्भ में इस तरह की जिज्ञासा स्वाभाविक है। मीरा का खुद औरत होना, उनका स्वतः यातना भोगना हमारी जिज्ञासा को एक आधार देता है। हमारा वांग्मय गवाह है कि स्त्री के बारे में मीरा के पहले जो कुछ लिखा गया उसे लिखने वाले पुरुष थे, वे वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, भवभूति कोई भी हो। उनकी रचनाओं में स्त्री की ख्यात स्त्रियों की सीता, द्रौपदी, शकुंतला आदि के जो भी बिंब उभरे हैं उन पुरुष रचनाकारों द्वारा निर्मित बिंब है। पृष्ठ संख्या 257। स्त्री उनकी रचनाओं में उनकी संवेदना, सहानुभूति सब कुछ पा सकी है, परंतु अंततः वह आर्य शास्त्र अनुमोदित नियमों मर्यादाओं के दायरे में ही बांधी गई है। उस सामाजिक संरचना का उन पुरुषों द्वारा समर्थन ही है जिसमें स्त्री के लिए मुक्ति की बात को अमान्य किया गया है। वाल्मीकि की रामायण देखे या व्यास की महाभारत यातना के कठिन दौरों से गुजर कर भी सीता, द्रौपदी तथा दूसरी नारियां जन्म जन्म से उन्हीं पतियों को पाने की आकांक्षा रखती हैं, उन्हें ही परमेश्वर मानती हैं जिनके द्वारा वे यातनाग्रस्त हुई हैं। कहा जा सकता है कि चूंकि ये पुरुषों द्वारा रचित कृतियां हैं, उनमें पुरुष मानस से स्त्री के ऐसे ही बिंब सामने आ सकते थे जो उनके मन के अनुरूप हो, जैसा कि वे आए भी हैं। परंतु मीरा के यहाँ मीरा के नाम पर जो कुछ संकलित है वह मीरा का अपना रचा और गाया हुआ है। वह पुरुष की रचना न होकर एक स्त्री की रचना है, पहली बार एक स्त्री की रचना, और उस स्त्री की रचना जो महत रचनाकार नहीं भोक्ता भी है। उसने जो कुछ रचा गाया है अपने भोगे हुए को, सहन किए हुए को, ऐसी स्थिति में ही अपनी जिज्ञासा को आधार मिलता है कि क्या अपने जिए भोगे को गाते अभिव्यक्त करते हुए मीरा को रचनाकार मीरा को अपने साथ साथ स्त्री जाति का दुख, उसकी पराधीनता, उसके द्वारा भोगा और सहा जाना तथा जिन बंधनों में स्त्री जकड़ी है उनसे स्त्री जाति की मुक्ति की आकांक्षा भी कभी याद आई? अपनी यातना में, मुक्ति की अपनी आकांक्षा में, क्या वे स्त्री जाति की यातना, मुक्ति की उसकी आकांक्षा को भी देख सके? अपनी यातना को क्या स्त्री जाति की बृहत्तर यातना से वे जोड़ सकी? जिज्ञासा इसलिए ताकि मीरा को एक समग्रता में जान सके। पैराग्राफ चेंज। इसी से जुड़ी हुई एक जिज्ञासा और भी। मीरा के पद उनकी दो तरह की जीवन स्थितियों में रचे गए पद हैं। एक, जब वे राजमहल की चार दीवारी के बंधन भीतर बंधन की स्थितियों में रच और गा रही थी। दूसरा, राजमहल छोड़े जाने के बाद से द्वारका तक मृत्यु पर्यंत उनके द्वारा रचे और गाए गए पद, जब वे अपेक्षाकृत मुक्त बंधनों की जस से बाहर आ गई थी। कहते हैं राजमहल छोड़ देने के बाद भी राज परिवार ने मीरा पर सदैव दबाव बनाए रखा, उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। कहा तो यहाँ तक गया है और जो भी संभावित है कि द्वारका में कृष्ण की मूर्ति के आगे मीरा के अंतर्धान हो जाने की कथा सिर्फ कथा ही है। वस्तुतः मीरा की वह हत्या थी। वास्तविकता जो भी हो, राजमहल के बाहर आकर मीरा अपेक्षाकृत अपने मनोवांछित जमीन पर आ गई थी। पृष्ठ संख्या 258। जिज्ञासा है कि क्या दो जीवन स्थितियों में लिखे रचे गए इन पदों को अलग से शिनाख्त की गई है ताकि दोनों को समानांतर रखकर जाना जा सके कि भिन्न जीवन स्थितियों में रचे गाए गए इन पदों में क्या मीरा की मनोभूमि में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है? राजमहल से बाहर आकर क्या वे श्री कृष्ण के प्रेम भाव में ही डूबकर रह गई अथवा अपनी मनोवांछित जमीन पा जाने के बाद उन्हें स्त्री जाति की यातना भी याद आई? क्या उन्होंने पुरुष वर्चस्व वाले समाज के समक्ष वैसे ही कुछ सवाल खड़े किए जैसे तब खड़े किए गए थे जब वे बंधन में थी? पैराग्राफ चेंज। इन जिज्ञासाओं के मूल में हमारा आशय महज इतना जानना ही है कि क्या मीरा की यातना, उनका विद्रोह, पराधीनता की नियति से मुक्त होने की उनकी इच्छा, उनकी तड़प, स्त्री जाति की वैसी ही यातना, पराधीनता या मुक्ति की आकांक्षा से जुड़ती है, खास तौर से मीरा की अपनी पहल पर? हम जानते हैं कि मीरा राज परिवार से जुड़ी हुई स्त्री थी, विवाह के पहले भी और विवाह के बाद भी। श्री कृष्ण के प्रति उनके एकल प्रेम भाव और भक्ति से भी हम परिचित है। हम उस समय को भी जानते और पहचानते हैं जिसे मीरा जी रही थी। उस समय की स्थितियों से भी हम अनभिज्ञ नहीं है। हमें ज्ञात है कि मीरा या उस समय के कोई भी संत या भक्त हमारे अपने समय की तरह के कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, ना ही मीरा स्त्री मुक्ति की कोई एक्टिविस्ट थी जो स्त्री जाति की मुक्ति का कोई आंदोलन छेड़ती और उसका नेतृत्व करती। अपने समय की स्थितियों में खींचकर हम मीरा को अपनी मनोभूमि के अनुरूप ढालने का प्रयास भी नहीं कर रहे। मीरा के अपने समय में जो नामुमकिन था उसकी इस कसौटी पर हम मीरा को नहीं परखना चाहते। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि एक स्त्री होने के नाते अपने कहे लिखे गाए गए हैं, क्या मीरा ने ऐसा भी कुछ लिखा है जो उनकी अपनी निजी यातना या आकांक्षा से आगे स्त्री जाति की यातना और आकांक्षा से भी जुड़ सका हो, एक बृहत्तर यत्ता पा सका हो? यदि मीरा के ऐसे पद हमें मिले तो मीरा के महत्व का संदर्भ भी बड़ा हो जाता है। मीरा की समकालीनता तो गाढ़ी होती ही है। मीरा अपने समय संदर्भ से हमारे समय संदर्भ तक अंधकार में एक प्रखर ज्योति रेखा की तरह भास्वर हो उठती है।